दिन भर बुधवार 30 सितंबर मैं हूं निखिल रंजन। ২০০৬ के मुंबई धमाकों में 12 आरोपियों को मकोका अदालत ने सुनाई सजा। दोषियों के परिवार का दावा साजिश हुई उनके साथ।
सुन के हैरत होगी कि जब जेल में जाने के एक साल बाद हम लोग को जेल के अंदर मारा गया एटीएस के ऑफिसरों के कहने पर, सिर्फ इसलिए कि हम अप्रूवर बनने तैयार नहीं थे।
खास बातचीत उस शख्स से जिसने दोषी होने के शक में बिताए 9 साल जेल में। दिल्ली के पास दादरी में गोमांस खाने के संदेह में एक शख्स को घर से निकालकर भीड़ ने मारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार, कितने दूर कितनी पास, चर्चा होगी दुनिया जहान में।
धीरे धीरे करके संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपनी सार्थकता खोता जा रहा है, इसलिए आवश्यक है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। मुंबई की विशेष अदालत ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने 7 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 9 साल पहले हुए धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष ने पिछले हफ्ते 12 में से 8 दोषियों के लिए मौत की सजा और बाकी 4 को आजीवन कारावास दिए जाने की पैरवी की थी। रूस ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हमले शुरू कर दिए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जेट विमानों ने चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बम फेंके हैं, लेकिन अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि जिन ठिकानों पर रूस ने हमले किए हैं वो इस्लामिक स्टेट के कब्जे में नहीं लगते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस सिर्फ हवाई हमले करेगा, जमीन पर सेना नहीं उतारी जाएगी।
Разумеется, не собираемся погружаться в этот конфликт, что называется, с головой.
हम इस संघर्ष में बहुत हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम एक तय खांचे के तहत ही काम करेंगे। पहले हम सीरिया की सेना के सिर्फ कानूनी तौर पर की जाने वाली कार्रवाइयों में ही मदद करेंगे। दूसरा, सिर्फ हवाई हमलों का सहयोग दिया जाएगा, ज़मीन पर सेना नहीं उतारेंगे। तीसरा, हमारा समर्थन तय समय सीमा तक ही होगा। ये थे व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मीना में हुई भगदड़ को लेकर ईरान ने सऊदी अरब की आलोचना तेज कर दी है। पिछले हफ्ते हज के दौरान मीना में भगदड़ में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतोला अल खमेनेई ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब ईरान के मृतकों के शव नहीं लौटाएगा तो आलोचना तीव्र हो जाएगी। खमेनेई की वेबसाइट पर छपे एक बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब ने हादसे की जिम्मेदारी नहीं ली है। रविवार को उन्होंने सऊदी अरब सरकार से माफी मांगने की भी मांग की थी। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने कुंदूज शहर में अफगान सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक पर कब्जा कर लिया है। तालिबान लड़ाकों ने बालाहिसार किले पर कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुंदूज में अस्पतालों में घायल नागरिकों और सैनिकों के इलाज में काफी दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सड़कें खोद दी गई हैं और शहर में बिजली और पानी की आपूर्ति भी ठप हो गई है। चीन के गुआंगजी इलाके में एक छोटे शहर में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत की खबर है और इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक शहर में सरकारी इमारतों, अस्पताल और शॉपिंग मॉल समेत अलग अलग स्थानों पर 13 पार्सल बम रखे गए थे। इंटरनेट पर जारी तस्वीरों में एक आधी टूटी इमारत से धुएं का गुब्बार निकलता दिख रहा है। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि धमाकों के लिए कौन जिम्मेदार है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आज आपके साथ निखिल रंजन। मुंबई में साल 2006 में लोकल ट्रेनों के अंदर हुए धमाकों के सभी 12 आरोपियों को आज मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने सजा सुना दी। जहां मुंबई पुलिस, एटीएस और सरकार इसे आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ी जीत मान रही है, वहीं दोषियों के परिवारजन इसे एक गहरी साजिश और सरकारी मिलीभगत मान रहे हैं। इस मामले के सभी पहलुओं और आज की अदालती कार्रवाई पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मुंबई से हमारे सहयोगी सुशांत मोहन।
मुंबई की सत्रीय और जिला अदालत के परिसर के बाहर आज सुबह से ही मीडिया और पुलिस की भारी तैनाती थी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए धमाकों के लिए दोषी पाए गए सभी 12 लोगों को आज सजा सुनाई जानी थी और इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए थे। सुबह करीब 11 बजे सभी 12 दोषियों को अदालत में लाया गया और जब वो गलियारे से गुजरे तो उनके चेहरे भाव शून्य थे, लग रहा था वो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। ठीक 11:30 पर अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और महज 20 मिनट में फैसला सुना दिया गया कि 12 में से 5 दोषियों को ट्रेन में बम रखने के जुर्म में फांसी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद आरोपियों के परिवार वाले सदमे में थे और वहीं बचाव पक्ष के वकील नाराज दिखाई दे रहे थे। फांसी की सजा पाने वाले आसिफ खान के भाई, जो अदालत के कमरे से कुछ दूर खड़े होकर अपने भाई को खिड़की से जाते देख रहे थे, कहते हैं,
मिलने नहीं दे रहे यार।
आपको आखिरी बारी कब मिला?
केस शुरू हुआ जब ट्रायल में जब मिला।
अच्छा, और अभी
जब से जजमेंट हुआ जब से नहीं मिलने दिए।
आपको मालूम चल गया जजमेंट
प्लांटर में बताया फांसी का? मैं तो अकेला हूँ, बाकी तो दूसरे परिवार के लोग हैं। अभी वकील लोग आएंगे, अभी देखेंगे, जब बात करेंगे उनसे क्या होता है, नहीं तो न्यायालय हाईकोर्ट में जाएंगे ऊपर।
इस मामले में बचाव पक्ष के वकील खान अब्दुल वहाब ने बीबीसी से कहा,
5 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया है, कमाल, फैसल, एहतिशाम, नवेद और आसिफ। जिन्हें प्लांटर दिखाया गया था उन्हें डेथ सेंटेंस दिया गया है, बाकी को लाइफ दी गई है। कोर्ट ने उन्हें प्लांटर मांगा है, मगर हम डिफेंस एडवोकेट मैं इतना कह सकता हूँ, जैसे अभी दिन का उजाला है उसी तरह वो लोग इनोसेंट है।
क्या इस फैसले को आप हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे?
ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स वी आर 100% श्योर दैट विल गेट एक्विटल।
सजा पाए दोषियों के परिवारजनों ने अदालत परिसर के बाहर इस सजा का विरोध किया और सरकार के साथ साथ पुलिस और ATS पर भी भारी आरोप लगाए।
मैं हकीकत बयान कर रहा हूं और ये सबके सामने आ जाएगा। अलकायदा मैनुअल की बात कर रहे हैं, इनके पास अलकायदा मैनुअल है, इनको कैसे पता है कि अलकायदा मैनुअल में क्या है? ये हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ को इन लोग जो है एक मतलब अपने दिमाग से, इनके पास राइटर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, हर एक प्लान करते हैं, अलग अलग स्टोरी बनाते हैं। अब नवेद का जो कन्फेशन टीवी पे दिखाया जाता है, वो मार मार के कन्फेशन लिया गया है और इस केस में इनके पास कोई सबूत नहीं है। सारे सबूत जो है इन्होंने प्रोड्यूस किए, मतलब सब फॉल्स हैं, सारे एविडेंस फॉल्स हैं। कोर्ट के सामने RTI बहुत सारी चीज़ें रखी गई। एक तो टैक्सी ड्राइवर ऐसा है कि जिसने प्लांटर को देखा और कोर्ट में आके गवाही दी, लेकिन जब उसकी टैक्सी की हम लोगों ने RTI से RTO से उसका रिकॉर्ड मंगाया तो वो टैक्सी का नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी स्कूटर का नंबर है। इस तरह के एविडेंस हमने कोर्ट के सामने पुट किए, फिर भी उसको कोर्ट ने उसको नहीं माना, तो मतलब ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और ATS की मिली भगत है जिसमें इनको कन्विक्शन दिया गया।
ये थे फांसी की सजा पाए कमाल अंसारी के भाई खालिद अंसारी, जो काफी देर तक मीडिया के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त करवाते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग इस मामले से दुखी थे। 9 साल पहले हुए इन बम धमाकों में 189 लोगों की जाने गई थी और करीब 850 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घायलों में से एक हर्षद साह कहते हैं,
वो तो इंसाफ भगवान करेगा, ऊपर वाला करेगा। अभी वो तो देखो, अभी वो जो इंसिडेंट हुआ है वो तो भूल जाने का ही बेटर है, याद करके अपन अपना अपना तबियत क्यों खराब करें।
इस फैसले से आतंकवादी निरोधी दस्ते के मुखिया KP रघुवंशी भी खासा खुश नजर आए और उन्होंने कहा,
हमारा ये सोचना है कि हमें बहुत ही खुशी होती अगर जो बाकी लोग जो यहाँ से निकल के चल गए उनको भी हम अरेस्ट कर पाते और सबके सब कोर्ट के सामने हाजिर होते। लेकिन हाँ, भले ही लंबा समय हुआ, लेकिन कम से कम जिन लोगों ने 5 लोगों ने प्लांट किए थे और जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उनको, उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं, उन लोग जो लोग इंजर्ड हुए थे, फैमिली इतनी लंबी सफ़र किया है, और मुंबई करों को मुझे लगता है आज समाधान होना चाहिए और न्याय मिला है, ऐसा हम लोगों का मानना।
फिलहाल इस मामले में विशेष अदालत ने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन सभी आरोपियों के पास कानूनन यह रास्ता बचा है कि वे उच्च न्यायालय में इस सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जो परिवार और बचाव पक्ष की बातें सुनकर लग रहा है की भी जाएगी। सुशांत मोहन, BBC मुंबई।
मुंबई ट्रेन धमाकों में एक व्यक्ति को कोर्ट ने 9 साल बाद सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। अब्दुल वहीद बिन मोहम्मद शेख को कोर्ट ने 11 सितंबर को रिहा किया था, लेकिन जेल में बिताए गए 9 सालों में अब्दुल पर क्या बीती, इस केस के बारे में उनका क्या कहना है और अब वो भविष्य में क्या करेंगे, इन सभी विषयों पर अब्दुल से बात की सुशांत मोहन ने।
मुझे 11 सितंबर 2015 को इस केस से एक्विट किया गया है। मैं 9 साल जेल में था और मुझे पूरी तरह मालूम है ये केस जो है पूरा का पूरा फॉल्स है। मैं उन 12 लोगों के साथ 9 साल काटे हैं। मैं उनकी लाइफ के बारे में और उनके रिलेटिव्स के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जानता हूं। उन सबको फॉल्सली इम्प्लिकेट किया गया है। जिस तरह मुझे आज रिलीज़ किया गया है, मुझे ये उम्मीद थी कि उन भाइयों को भी रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन उनको आज कन्विक्शन दिया है, ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है।
आपको कह रहे हैं कि वो लोग पाकिस्तान से अलकायदा?
सब झूठ है। जब भी हमने कोई कंप्लेंट की है कोर्ट में टॉर्चर की, और ये कि भाई कन्फेशनल स्टेटमेंट पर जानबूझ के हमारी साइन ली गई, जब भी हमने कंप्लेंट की है उन लोगों ने ये कहा है कि साहब ये अलकायदा मैनुअल पर चलते हैं। आज तक के कोर्ट के रिकॉर्ड पे अलकायदा मैनुअल नहीं है। लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा सिंह जब कोई कंप्लेंट करती है या हॉस्पिटल जाने का डे जब वो एप्लीकेशन करती है, तो वहाँ पर वो जेल मैनुअल अलकायदा मैनुअल की बात नहीं करती। यू नो माय पॉइंट, जब यानी हम कर रहे हैं तो हमारे लिए अलकायदा मैनुअल रख करके हमारे सारे पॉइंट्स को कोलैप्स किया जाता है।
ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है जब ऐसी कोई घटना हो जाती है?
बहुत मुश्किल है। मेरा यहाँ पर अंदर जो है एक एक मिनट हमारे लिए मुश्किल था। हमको जो है बिल्कुल अंडा सेल में बंद रखा गया था। बहुत टॉर्चर होता था, बहुत तकलीफ होती थी। यानी आपको सुन के हैरत होगी कि जब जेल में जाने के एक साल बाद हम लोग को जेल के अंदर मारा गया ATS के ऑफिसरों के कहने, सिर्फ इसलिए कि हम अप्रूवर बनने तैयार नहीं।
और वो लोग ये भी कह रहे थे कि आपके फैमिली को भी टॉर्चर किया गया?
हाँ, मोहम्मद अली के घर पर गवंडी में अभी 2-3 साल पहले तक के वो जाते थे, उसके बेटे को मारा और उसकी वाइफ को धमकी देते थे और कहते थे खामोश रहना, कंप्लेंट नहीं करना, लिखना नहीं। फिर बेचारी वो लेडी जो है बुरका पहने वाली लेडी, फिर उसने कंप्लेंट किया और सब जगह पर वो गई। वो आज भी बेचारी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है।
आप अभी जब एक्विटल आप छूट गए वहाँ से जी, उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं?
मैं सिर्फ उसके बाद से लेके अब तक के इन भाइयों को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है। मैं तमाम लोगों से मिल रहा हूँ और तमाम लोगों को उनके मैसेजेस पहुंचा रहा हूं, उनके जो लेटर्स है वो पहुंचा रहा हूं। और मेरा एक ही मकसद है अभी ज़िंदगी का कि वो भाई किस तरह से बाहर आ जाए, क्योंकि वो भी इनोसेंट है।
आपको कहीं नौकरी मिलने में परेशानी लोगों के बीच में समाज?
नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि समाज के हर लोगों ने मुझे वेलकम कहा है, मेरा जो है स्वागत किया है कि आप जो है छूट कर आए हैं, आप बेगुनाह थे। और समाज के लोगों का ये भी कहना है कि वो भी बेगुनाह है लेकिन वो जो है इस सिस्टम से मार खा गए।
आपके परिवार में भी कौन?
मेरी वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी माँ है बूढ़ी, मेरे भाई है, उनके फैमिली।
कहाँ रह रहे हैं?
मैं विक्रोली पार्क से।
अब सब ठीक है? पहले
अब सब ठीक है और अभी कोई नहीं, अब सब ठीक है इस सेंस में कि पुलिस वालों का और जो कन्फाइनमेंट था वो खत्म हो गया है, मैं रिलीज हो गया हूँ। लेकिन ये भाइयों का गम मुझे खाया जा रहा है, क्योंकि उसमें मेरा साला भी अंदर है जिसको 5 लाइफ दी है आज कोर्ट ने, साजिद अंसारी।
मुंबई ट्रेन धमाकों में 9 साल तक आरोप झेलने वाले अब्दुल वहीद से बात की थी हमारे सहयोगी सुशांत मोहन ने। और अब रुख करते हैं दादरी का। दिल्ली से सटे दादरी में एक शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है। उसे इस शक में मारा गया है कि उसने गोमांस खाया है। सोमवार को हुई हिंसक घटना के बाद उत्तर प्रदेश के दादरी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पड़ोसी जिलों से भी अतिरिक्त बलों को मंगवाया गया है ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना में मारे गए अखलाक अहमद के परिवार को 10 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की घोषणा की है। BBC संवाददाता सलमान रावी ने वहां जाने के बाद ये रिपोर्ट भेजी है।
दादरी के बिसारा गांव में दूर दूर तक वीरानी छाई हुई है। इलाके की दुकानें बंद हैं और लोग सड़कों पर से नदारद। सरकारी कर्मियों और मीडिया के लोगों के जमावड़े के बीच अखलाक अहमद का घर है जहां मातम का माहौल है। सोमवार को हुए हमले में अखलाक की मौत हो गई जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ है। अखलाक की माँ असगरी उस वक्त को याद कर सिहर उठती हैं जिस वक्त कई लोगों ने उनके घर पर एक साथ हमला कर दिया था।
बहुत बेकार हो रहा, हमारा बच्चा 2 पैसे की मजदूरी करता था, रोटी खा रहे थे। गांव वालों ने बहुत बुरा किया हमारे साथ, बिना कसूर के, बिना गलती के, बिना कुछ बात के। कोई हमारी पीढ़ी गुजर गई 2-3, आज तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ किसी से, कोई बात नहीं हुई किसी से। हमारी पता नहीं ये कौन क्या बदमाशी नठाना क्यों हमें मारने को आए, ये हम नहीं कह सकते। अब ये अफवाह उड़ाया कि गाय काटी है। अब गोजर खाता त्यौहार का वो उठा के ले गए, मिल गया साबुत मिल गया। वो चेक भी करवाया कि ये कहाँ वो होता तो उसका मैं तबक देखा था।
कहा जा रहा है कि पास के ही मंदिर से किसी ने माइक से घोषणा की थी कि अखलाक के घर गौमांस खाया जा रहा है। मंदिर के पास के ही रहने वाले पंकज कुमार का कहना है कि माइक की आवाज़ सुनकर जब तक वो घर से बाहर निकल पाते तब तक बड़ा हुजूम अखलाक के घर की तरफ जा चुका था।
ये दुकान करीबन 10 बजे करीबन बंद की थी और ये जो हंगामा हुआ था करीबन 10:20 हुआ था। तो उस टाइम खाना खा रहे थे, अलाउंसमेंट हो रहा था मंदिर में, ये पता नहीं थी कौन कराने आया था। इतने खाना वाना खा के आए, हाथ वाथ धो के आए थे, तो इतने देखा यहाँ पे टोटल भीड़ वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर ये केस हुआ था। तो मंदिर में कोई बंदा नहीं था, एक भी, टोटल पब्लिक उधर भी भाग छूट रही थी, मुझे पता नहीं क्या बात होगी।
जमील अहमद अखलाक के बड़े भाई हैं और घटनाक्रम से काफ़ी मायूस हैं। वो कहते हैं कि अब उनका परिवार गांव छोड़कर चला जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना था कि जिस वक्त हमला हो रहा था उस वक्त भी जो लोग उनके परिवार को बचाने आए थे वो भी हिंदू ही थे।
रहने के पक्ष में नहीं है फिलहाल, आगे भगवान जाने ऊपर वाला जाने क्या होगा, क्या क्या सुरक्षा माने अपनी हम बताओ। जब इतनी बड़ी सभ्यता हमारे पूर्वजों तक की यहाँ पे है उसके बाद भी ये हुआ है तो आगे कोई उम्मीद मतलब मन जो है वो समझते ना बस वो जम नहीं रहा है। अब ये भगवान जाने क्या हुआ है मन में, किसका हाथ है क्या है, ये कोई साजिश लगती है, मन ये कहता है कोई साजिश लगी बनी साजिश है पीछे से कोई, या किसी मैन आदमी का हाथ है कोई बाहर का आदमी है। हमारे गांव वालों को लोगों का हिसाब ऐसा नहीं है, बचाने वाले कोशिश करने वाले खींचने वहाँ से अलग करने वाले, लेकिन सब अपने लोग थे अपनी चाचाताऊ थे लेकिन उनकी चल नहीं पाई पब्लिक के सामने।
इस इलाके के विधायक सतबीर गुज्जर इस घटना को एक राजनीतिक साजिश के रूप में देखते हैं। उनको लगता है कि पूरी घटना के पीछे शरारती तत्वों का हाथ है।
नहीं, बाहर के लोग या सामाजिक तत्व जो आए हैं उन्होंने यहाँ के भड़काया लोगों को, और ये ऐसी घटना जो रात को 10:30 बजे घटी है ये उन्हीं की देन है जो बाहर के लोग आए हैं। यहाँ के लोगों ने कभी ऐसी अगर ऐसी भावना होती तो कभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले या साल पहले कभी ना कभी कोई ऐसी घटना इनके साथ में घटी हुई होती।
अखलाक के घर दिन भर लोगों का हुजूम लगा रहा जिनमें ज़्यादातर मीडियाकर्मी और सरकारी अधिकारी थे। गौतम बुद्ध नगर के अतिरिक्त जिला अधिकारी राजेश कुमार यादव ने BBC से बात करते हुए दावा किया कि इलाके में स्थिति अब तेजी से सामान्य की तरफ बढ़ रही है।
अब सामान्य माहौल होता जा रहा है धीमे धीमे। कल DM साहब ने DIG साहब ने यहाँ के आसपास के सभी ग्रामीणों की सभी लोगों की मीटिंग कॉल की थी, उसमें आपसी सद्भाव और सौहार्द बनाने की अपील की थी। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी ये जघन कार्रवाई की अपराध किया है उनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा रही है, 6 लोग जेल भेजे जा चुके हैं, बाकी के और भी लोग जो है उसके लिए दबिश दी जा रही है। तो स्थिति जो है अब नियंत्रण में है और धीमे धीमे सामान्य होती जा रही है।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना में मारे गए परिवार को 10 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने की घोषणा की है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। मगर बिसाड़ा के रहने वाले लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आपसी सौहार्द से रह रहे लोगों के बीच इस तरह की घटना आखिर घटी कैसे। सलमान रावी, BBC, बिसाड़ा गांव, दादरी।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
दिनभर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं BBC रेडियो पर निखिल रंजन के साथ, और अब बात दुनिया जहान की। 70 सालों से संयुक्त राष्ट्र दुनिया की रहनुमाई करता आ रहा है, लेकिन अब ये आम सहमति बनती जा रही है कि सुरक्षा परिषद अपनी अहमियत खो रहा है जिसे सुधारों के जरिए ही वापस लाया जा सकता है। मुश्किल ये है कि स्थायी सदस्य देशों तक ये बात नहीं पहुंच रही, या फिर शायद वो जानबूझकर इसे अनसुनी कर रहे हैं। स्थायी सदस्य देश बनने की भारत की कोशिश कब तक परवान चढ़ सकेगी, आज दुनिया जहान में इसी पर बात करते हैं। दुनिया जहान। दूसरे विश्व युद्ध की आग में करीब 6 करोड़ लोगों की जान गई, तब दुनिया को शांति की अहमियत का अंदाजा हुआ और संयुक्त राष्ट्र का जन्म हुआ।
एंड इट इज नाउ माय ड्यूटी, माय ऑनर एंड माय प्रिविलेज इन द चेयर टू कॉल फॉर ए वोट ऑन द अप्रूवल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस।
ये वो दौर था जब ब्रिटिश राज का सूरज अस्त होने चल पड़ा था और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में दुनिया को नई सुपर पावर मिली। युद्ध तो खत्म हो गया था लेकिन तबाही के निशान कदम कदम पर मौजूद थे, और दो ध्रुवों में बटी दुनिया शीत युद्ध की ओर बढ़ रही थी। ऐसी मुश्किल में व्यवस्था कायम करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र ने संभाली। नतीजा ये हुआ कि शीत युद्ध का तापमान एक सीमा से ऊपर नहीं गया और दुनिया पिछले 70 सालों में कम से कम तीसरे विश्व युद्ध को दूर रख पाने में कामयाब हुई। वो काम जो लीग ऑफ नेशन दूसरे विश्व युद्ध के मामले में नहीं कर सका। JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर CSR मूर्ति।
व्हाटएवर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स दैट हैव हैपेंड सो फार इन द लास्ट 70 इयर्स
पिछले 70 साल में जो भी स्थानीय संकट हुए वो स्थानीय स्तर पर ही रहे, वो अंतर महाद्वीपीय नहीं बने और इस तरह से तीसरे विश्व युद्ध को होने से बचा लिया गया। अगर यही पैमाना हो तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अच्छा काम किया है।
संयुक्त राष्ट्र की कामयाबी को लेकर लंबी बहस हो सकती है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं कि इसका सबसे बड़ा हथियार है सुरक्षा परिषद, वो संस्था जिसके 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। ये ताकत उन्हें ये तय करने का अधिकार देता है कि सुरक्षा परिषद किस बात की चर्चा करे और किसकी नहीं। पिछले 7 दशकों में सुरक्षा परिषद ने कई बार अपने फैसलों से दुनिया के नक्शे का रंग और लकीरें बदली, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ जब उसकी किसी ने नहीं सुनी या फिर कुछ आवाजें उसके कानों तक पहुंची ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत चिन्मय गरे खान,
कोल्ड वॉर के पीरियड में सिक्योरिटी काउंसिल तो बिल्कुल डेडलॉक हो गया था। कोल्ड वॉर के बाद दोनों मुल्क यानी सोवियत यूनियन, उसके बाद रशिया और अमेरिका साथ में काम किया उन्होंने बहुत। जो 90s का जो अर्ली 90s का जो डेकेड था उस वक्त वो बहुत मिलके काम किया उन लोगों ने। तो वैसे नो ऑल दिस प्रॉब्लम सोमालिया है वगैरह वगैरह, तो खास करके फर्स्ट गल्फ वॉर जो सद्दाम हुसैन ने कुवैत को खाने की जो कोशिश की उस वक्त उन्होंने साथ में मिलके ही बहुत काम किया, और यूगोस्लाविया प्रॉब्लम में भी थोड़े से मिले थे। तो वो सब उस वक्त ठीक था। अब क्योंकि इन दोनों देश के बीच में फिर से टेंशन शुरू हो गया है तो अब सिक्योरिटी काउंसिल काम ठीक नहीं कर पा रही है।
50 देशों के साथ शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र अब 193 देशों का संगठन है। उस वक्त जितनी दुनिया की आबादी थी उससे ज्यादा लोग अब केवल चीन और भारत में रहते हैं। ऐसे में वही 5 देश पूरे विश्व के हितों की चिंता करें, ये बात बेमानी लगती है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा,
जो परिवर्तन आया है पूरे विश्व के रचना में, आज 70 साल के बाद ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको वो बिल्कुल ही नहीं परिलक्षित करता है, और इसीलिए धीरे धीरे करके संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अपनी सार्थकता खोता जा रहा है, इसलिए आवश्यक है सुधार।
अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, और अब मसला ये है कि सुरक्षा परिषद में सुधार किस तरह से हो, लेकिन ये तय करने से पहले स्थायी सदस्यों को सुधार के लिए रजामंद करना होगा। अब तक दुनिया के फैसले करते आए देश अपनी मुट्ठी ढीली करेंगे, इसकी गुंजाइश कम दिखती है। चिन्मय गरे खान,
वो जो 5ों जो शक्तियां हैं वो मिलजुल के काम करती है इस विषय के ऊपर कि भाई हम ये कहेंगे आप ये कहना, लेकिन 5ों में से कोई भी ऐसा एक भी नहीं है जो हकीकत में उसमें सुधार चाहता है। बात कोई खास बदली नहीं है, यही थोड़ा सा एटमोस्फेरिक्स में थोड़ा चेंज हुआ है। मुझे लगता है इसलिए हो रहा है और हुआ है कि आजकल जो दुनिया की जो हालत वो ठीक नहीं है, और खास करके मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसमें कोई उसका अंत नजर नहीं आ रहा है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेलमेट है सीरिया के बारे में, इराक के बारे में, लीबिया के बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर इन 5ों शक्तियों पर बढ़ा है और बढ़ रहा है।
एक तरीका ये हो सकता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और ये देश वीटो पावर के इस्तेमाल से बचना शुरू करें। सीएसआर मूर्ति,
इवन फ्रांस हैज सेड इट इज रेडी टू हैव सम रेस्ट्रिक्शंस।
यहाँ तक कि फ्रांस ने भी कहा है कि वीटो के इस्तेमाल को लेकर वो कुछ बंदिशों को तैयार है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उसने पिछले 25 साल से किसी प्रस्ताव पर वीटो नहीं किया है। ये एक तरह की उनकी चालाकी है। कई ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो की ताकत है लेकिन वो इसे इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता 5ों स्थायी सदस्य देश इसे छोड़ने को तैयार नहीं होंगे।
भारत समेत जर्मनी, ब्राजील, जापान और दक्षिण अफ्रीका बढ़ चढ़कर स्थायी सदस्य बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन हर देश का विरोध करने वाला भी मौजूद है। भारत के लिए ये बात अच्छी हो सकती है कि एशिया की दावेदारी बड़ी होने के साथ ही उसका विरोध ही संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर उतना मजबूत नहीं। भारत जर्मनी, जापान और ब्राजील के साथ मिलकर खेमेबाजी के जरिए सुधारों के लिए दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन ये तरीका उल्टा भी पड़ सकता है। यशवंत सिन्हा,
जहाँ तक G4 देशों का सवाल है जिसमें भारत के अलावा जर्मनी, जापान और ब्राजील है, उनका जो उनके क्षेत्र में विरोध है उसका विरोध अब भारत को भी झेलना पड़ेगा अगर भारत उनके साथ सहयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। हमारे सामने 2 विकल्प थे, एक तो ये था कि इन देशों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ें या हम स्वयं आगे बढ़ें, और मुझे लगता है कि भारत अगर स्वयं अकेला आगे बढ़ने की कोशिश करता तो हमको ज्यादा समर्थन मिलता।
दूसरे विश्व युद्ध में जिन दो देशों की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है उन्होंने इसकी बड़ी कीमत भी चुकाई। जापान परमाणु बम की आंच में जला तो सब कुछ गंवाकर प्रतिबंधों में जकड़ा जर्मनी सालों तक दो हिस्सों में बटा रहा। आज ये देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदारों में हैं। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भारत की बड़ी भागीदारी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि उसे जर्मनी से सीख लेनी चाहिए। चिन्मय गरे खान,
ऑलरेडी वो इतना एक्टिव है और इतना इन्फ्लुएंशियल है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं है। 5+1 हम कहते रहते हैं हमेशा, ईरान के मुद्दे में तो देयर वर 6 परमानेंट मेंबर्स फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो दूसरे देशों के लिए प्रॉब्लम है, अब जैसे हमारे लिए है कि हमारी इन्फ्लुएंस तो है ही नहीं।
ब्रिटिश सत्ता से आजाद हुआ भारत तब बदहाली और विभाजन से जूझ रहा था, लेकिन आज वो बड़ा बाजार है। दूसरी ओर ब्राजील दक्षिण अमरीका का सबसे बड़ा देश है। साथ मिलने से आवाज बुलंद तो होगी, लेकिन सुरक्षा परिषद के कानों में ये कब तक गूंजेगी कहना मुश्किल है। आज का दुनिया जहान आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और अब सुन लेते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारतीय दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीकी टीम के अभ्यास मैच में खराब शुरुआत से मेजबान टीम के हौसले और बुलंद हो गए हैं। भारतीय टीम के रेगुलर सदस्य एक साल से ज्यादा लंबे अंतराल के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने जा रहे हैं। इसके बावजूद खिलाड़ी नहीं मान रहे कि उन्हें इस फॉर्मेट में ढलने में किसी भी तरह की परेशानी आ सकती है। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा कहते हैं,
I agree that we haven't played much T20 cricket together as a team, but considering the fact that a lot of the
मैं मानता हूं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं खेला है, लेकिन IPL और दूसरे टूर्नामेंट के जरिए दोनों टीमों के खिलाड़ी इस फॉर्मेट को खेलते रहे हैं। T20 में भारत ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन ही किया है। T20 विश्व कप ज्यादा दूर भी नहीं है, हम यहां से जितने भी T20 मैचेस खेलेंगे हमें फायदा होगा।
72 दिन लंबे भारतीय दौरे पर आई दक्षिण अफ्रीकी टीम को इंडिया ए के खिलाफ कल T20 अभ्यास मैच में 8 विकेट से मात खानी पड़ी थी। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रोटीज टीम के पास भी अच्छे बल्लेबाजों की भरमार है। एबी डिविलियर्स, जेपी डोमिनी, क्विंटन डीकॉक और फाफ डु प्लेसी भारतीय गेंदबाजों की परीक्षा ले सकते हैं। भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना के मुताबिक उनकी टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अति आत्मविश्वास से बचना चाहेगी।
जैसे आपने बोला अभ्यास मैच है वो, तो अभी जो मेन सीरीज है उसका प्रेशर अलग है, और जैसे रवि भाई ने और माही भाई ने हमेशा बोला है कि यू नीड टू गिव रेस्पेक्ट टू योर अपोनेंट। आई थिंक दिस दैट टीम इज वेरी गुड। वी प्लेड लॉट ऑफ मैचेस टुगेदर, IPL हो चाहे अभी वर्ल्ड कप हो और ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो, बट हम दोनों की जो स्ट्रेंथ है दोनों को कामली और एग्रेसिव खेलना अच्छा लगता है वो, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमेशा अंडर प्रेशर अच्छा किया है और उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आई वुड से कि ये जो सीरीज होने वाली काफ़ी चैलेंजिंग है।
T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से 8 बार भिड़ चुकी है, जहां उसे 6 में जीत और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
मुंबई की विशेष अदालत ने 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है और 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रूस ने कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने सीरिया में हमले शुरू कर दिए हैं। सीरिया के विपक्षी दलों ने कहा है कि 5 समुदायों पर हमले हुए, जिनमें बच्चों समेत करीब 27 लोगों की मौत हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने कुंदूज शहर में अफगान सेना के महत्वपूर्ण ठिकानों में से एक पर कब्जा कर लिया है। तालिबान लड़ाकों ने बाला हिसार किले पर कब्जा किया है। चीन के गुआंगजी इलाके में एक शहर में हुए बम धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक शहर में सरकारी इमारतों, अस्पताल और एक शॉपिंग मॉल समेत अलग अलग स्थानों पर 13 पार्सल बम रखे गए थे। दक्षिण अफ्रीका में हजारों लोग भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। प्रिटोरिया, केपटाउन और डर्बन में निकाले गए मार्च के आयोजकों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इससे व्यापक नागरिक आंदोलन शुरू हो पाएगा। मीना में हुई भगदड़ को लेकर ईरान ने सऊदी अरब की आलोचना तेज कर दी है। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। आज दिन भर में इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में। तब तक खबरें देखनी है तो आइए bbchindi.com पर। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने, सभी साथियों संग निखिल रंजन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।